السلام علیکم، یہ پارٹ 3 ہے ناول ڈارک فیس۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 3۔ تمہیں بلانے کے لیے اب آخری طریقے کار یہی رہ گیا ہے، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شیر آیا والی بات نہ ہو جائے کسی روز، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شیر آیا کیا مطلب؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ کمال ہے، دنیا بھر میں مشہور ہے یہ کہانی، لیکن آپ کو معلوم نہیں، ایک لڑکا اکیلا جنگل میں رہتا تھا، گاؤں وہاں سے ہٹ کر تھا۔ لڑکا اکثر شرارت کے طور پر ایک ٹیلے پر چڑھ کر شور مچا دیتا تھا کہ شیر آیا اور اسے کھا جائے گا۔ چنانچہ لوگ سب کام کاج چھوڑ کر اسے بچانے کے لیے دوڑ پڑتے، لیکن وہاں کوئی شیر نہ ہوتا، اور لڑکا اپنی شرارت پر خوب ہنستا، اور لوگ شرمندہ ہو کر واپس چلے جاتے۔ دو تین بار ایسا ہی ہوا، لیکن ایک روز واقعی شیر آ گیا۔ لڑکے نے خوب شور مچائے، لیکن گاؤں کے لوگ نہ آئے، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ لڑکا پھر شرارت کر رہا ہے، اس لیے وہ نہ آئے، اور شیر اس لڑکے کو کھا گیا۔ عمران نے پوری کہانی سناتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم میری سنجیدگی کا نوٹس نہیں لوگے؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب مجھے کیسے معلوم ہو سکے گا کیا واقعی سنجیدہ ہے یا نہیں؟ بہرحال مجھے تو آنا ہی پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سر سلطان بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ فائل دیکھو، اس میں ایک مدنیاتی سروے کی رپورٹ ہے۔ سر سلطان نے میز کی دراز سے نکالی ہوئی فائل عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ عمران نے فائل کھولی اور پھر رپورٹ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ رپورٹ 2 صفحات پر مشتمل تھی۔ رپورٹ پڑھ کر عمران نے فائل بند کر دی۔ کاٹ کس نامی دھات کے سلسلے میں رپورٹ ہے، عمران نے کہا۔ اصل بات تو تم نے مارک ہی نہیں کی کہ اس رپورٹ کی باقاعدہ کیمرے سے فوٹوگرافی کی گئی ہے، سر سلطان نے کہا۔ ہاں، اس کے نشانات موجود ہیں، میں سمجھا کہ ایسا سرکاری طور پر کیا گیا ہوگا، عمران نے کہا۔ اب تفصیل سن لو، کاٹ کس نامی دھات نایاب دھات ہے اور یہ میزائل سازی کے کام آتی ہے، لیکن اس رپورٹ کے مطابق یہ صرف کاٹ کس دھات نہیں بلکہ کاٹ کس ناٹولا نامی دھات ہے جو کاٹ کس سے بھی زیادہ نایاب ہے، اور کاٹ کس ناٹولا دھات کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری میں کام آتی ہے، اور کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری اقوام متحدہ کے تحت سختی سے ممنوع ہے، اور پاکستان نے بھی اس بین الاقوامی معاہدے پر دستخط کیے ہوئے ہیں کہ وہ کیمیائی ہتھیار تیار نہیں کرے گا۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کے خلاف پوری دنیا میں انتہائی سخت پابندیاں لگ جائیں گی۔ یہ پابندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی ملک بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود تمام ممالک خفیہ طور پر کیمیائی ہتھیار تیار کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں سب سے چھپایا جاتا ہے۔ مدنیات کو چیک کرنے والے خلائی سیارے نے جب اطلاع دی کہ پاکستان کے ایک علاقے جوہر آباد کے قریب واقع جنگل میں کاٹ کس ناٹولا کا کافی بڑا ذخیرہ موجود ہے، تو ہمارے ماہرین نے فوری طور پر اس رپورٹ کو تبدیل کیا اور اسے صرف کاٹ کس دھات ظاہر کیا گیا جو نایاب ہونے کے ساتھ ساتھ صرف میزائل سازی میں کام آتی ہے، تاکہ اقوام متحدہ اسے نکالنے پر پابندی نہ لگا دے۔ اس کے بعد ماہرین نے اس ذخیرے کا زمینی سروے شروع کر دیا، اور پھر یہ رپورٹ ماہرین نے تیار کر کے وزارت مدنیات کو دی ہے۔ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے کیونکہ اس میں کاٹ کس ناٹولا درج ہے۔ پروگرام یہ تھا کہ اس رپورٹ کو تبدیل کر دیا جائے گا اور فرضی رپورٹ سامنے لائی جائے گی۔ جب یہ رپورٹ وزارت مدنیات نے وصول کر کے وزارت دفاع کو ارسال کی تاکہ اس ذخیرے سے فائدہ اٹھانے کی پلاننگ کی جا سکے، لیکن وہاں ماہرین نے دیکھا کہ سائٹ رپورٹ پر ایسے نشانات موجود ہیں جیسے اس کی باقاعدہ کیمرے سے کاپی بنائی گئی ہو۔ یہ انتہائی خطرناک بات تھی، اگر یہ کاپی اقوام متحدہ تک پہنچا دی گئی تو پاکشیا پر انتہائی سخت پابندیاں لازمن لگا دی جائیں گی۔ جو انکوائری کی گئی ہے اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ماہر جس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے اس کا نام کامران ہے، اور کامران سے اس جنگل میں گریس لینڈ کی ایک لڑکی میگی جو ماحولیات پر کوئی تھیسس لکھ رہی تھی ملنے آتی رہتی تھی۔ پھر مزید اطلاع ملی کہ یہ لڑکی میگی جوہر آباد کے رئیس نواب احمد خان کی مہمان تھی۔ وہاں سے پتا چلا کہ اسے تم ساتھ لے کر حویلی آئے تھے، جب تمہارا نام سامنے آیا تو یہ ساری بات مجھ تک پہنچائی گئی، اور میں نے تمہیں اس لیے کال کیا ہے کہ وہ لڑکی کون تھی اور تم اسے وہاں کیوں لے گئے تھے۔ سر سلطان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، کیا یہ بات طے ہے کہ اس رپورٹ کی کاپی اس لڑکے نے ہی کی ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ویسے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اس میگی کی بات ہو رہی ہے جو اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر جوہر آباد گئی تھی۔ نہیں، کامران کے مطابق وہ لڑکی چونکہ نواب احمد خان کی مہمان تھی وہ باتیں کرنے آ جاتی اور ایک دو گھنٹے گزار کر واپس چلی جاتی۔ اس نے کبھی ریسرچ میں دلچسپی نہیں لی، کبھی نہیں پوچھا کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے پوائنٹس کامران ساتھ ساتھ لیتا رہا، پھر اس نے دو روز لگا کر ان پوائنٹس کی مدد سے رپورٹ تیار کی، اسے لفافے میں ڈال کر سیلڈ کیا، اور دوسرے روز سامان سمیٹ کر وہ دارالحکومت پہنچا اور اس نے رپورٹ اپنے افسران کے حوالے کر دی۔ البتہ اس نے یہ بتایا ہے کہ جس روز اس نے رپورٹ فائنل کی اور سیلڈ کی ہے اس روز بھی میگی ملنے آئی تھی اور دو گھنٹے بیٹھ کر چلی گئی تھی، لیکن یہ نشانات بتا رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے لاپرواہی سے کام لیا ہے، اور اس لڑکی نے کسی کیمرے کی مدد سے اس رپورٹ کی کاپی کی ہے، اور اس لڑکی کے بارے میں جب معلومات حاصل کی گئی تو پتا چلا کہ وہ کامران کی واپسی سے پہلے ہی رات کو دارالحکومت پہنچ گئی اور اسی رات پہلی دستیاب فلائٹ سے گریس لینڈ واپس چلی گئی ہے۔ سر سلطان نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کا خیال ہے کہ گریس لینڈ اس رپورٹ کی کاپی اقوام متحدہ کے حوالے کر دے گا؟ عمران نے کہا، گریس لینڈ خود کیمیائی ہتھیار بناتا ہے اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن اگر یہ رپورٹ اسرائیل یا کافرستان کے ہاتھ لگ گئی تو پھر لازمن یہ اقوام متحدہ تک پہنچے گی، اور ایک تو ہم یہ ذخیرہ نہ نکال سکیں گے اور دوسرا ہم پر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ سر سلطان نے جواب دیا، لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کاپی کی تو مزید کاپیاں ہو چکی ہوں گی، عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہوا ہو، سر سلطان نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ نقل واپس لائی جائے؟ ویسے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فوری طور پر دھات کا ذخیرہ وہاں سے نکال لیں، عمران نے کہا۔ نہیں، اتنی جلدی یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے خصوصی ماہرین اور مخصوص مشینری منگوانی پڑے گی، اس میں کافی عرصہ لگ جائے گا۔ ویسے تم بتاؤ کہ یہ لڑکی کون تھی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ واردات اس لڑکی نے کی ہو، سر سلطان نے کہا۔ تو عمران مختصر طور پر انہیں میگی کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ تم ان معاملات میں بے حد تجربے کار ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لڑکی ایسا کر سکتی ہے؟ سر سلطان نے کہا، جب اور کوئی غیر وہاں گیا ہی نہیں تو لامحالہ یہ کام اس میگی نے ہی کیا ہے، मैंने इसे वापसी पर अपने फ्लैट पर आने की दावत दी थी और इसने आने का वादा भी किया था, लेकिन वो नहीं आई। इससे यही लगता है कि इसे यहाँ से निकलने की बेहद जल्दी थी। इसकी वापसी का अंदाज बता रहा है कि वारदात इसी ने की है और वो आई भी इसी काम के लिए आई थी। अगर मेरे कानों में मामूली सी भनक भी इस बारे में पड़ जाती तो मैं इसे कवर कर लेता, लेकिन मुझे तो मालूम ही ना था कि वहाँ कोई सर्वे हो रहा है या नहीं, इमरान ने कहा। मैंने ग्रेसलैंड के चीफ सेक्रेटरी से बात की है, उन्होंने ऐसी किसी रिपोर्ट से यकसर ला इल्मी का इजहार किया है, बल्कि उन्होंने वादा किया है कि वो खुद इसकी इंक्वायरी करेंगे और अगर ये रिपोर्ट ग्रेसलैंड पहुंची है तो वो इसे वापस भिजवा देंगे, सर सुल्तान ने जवाब दिया। मसला ये है कि इस रिपोर्ट की वापसी के लिए काम किया जाए या नहीं, इमरान ने कहा। काम जरूर करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, सर सुल्तान ने कहा। ओके, ये रिपोर्ट आप वापस भिजवा दें ताकि इसके बारे में यहाँ जो काम होना है वो हो जाए, इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। इसने सर सुल्तान को सलाम किया और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी क्योंकि सर सुल्तान ने ढके छुपे अल्फाज में बात की थी, लेकिन इसे मालूम था कि अगर कीमियाई हथियारों की तैयारी के सिलसिले में बात अक्वामे मुतहदा तक पहुंच गई तो न सिर्फ ये तमाम जखीरा अक्वामे मुतहदा निकाल कर ले जाएगी बल्कि पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लग जाएगी, क्योंकि अक्वामे मुतहदा के चार्टर के तहत ऐसा जखीरा मिलने पर अक्वामे मुतहदा को इतला दी जानी जरूरी है और पाबंदियां लगने से पाकिस्तान वाकई तबाह होकर रह जाएगा। इसलिए वो बेहद संजीदा हो रहा था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर ऑफिस टेबल के पीछे बैठे हुए अधेड़ उम्र बॉस ने सर उठाया और फिर मेज के किनारे पर मौजूद बटनों की कतार में से एक बटन प्रेस कर दिया तो दरवाजा मेकानिकी के अंदाज में खुलता चला गया। दरवाजे पर मैगी मौजूद थी। आओ मैगी बेटो, बॉस ने कहा तो मैगी ने सलाम किया और मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। आपने फोन पर बताया था कि आप इस पाकिस्तानी रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, मैगी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, जिस रिपोर्ट की कॉपी तुम ले आई हो वो रिपोर्ट गलत है, बॉस ने कहा तो मैगी बेख्तियार उछल पड़ी। गलत है? क्या मतलब बॉस? मैंने तो असल रिपोर्ट की कैमरा फोटो खींची है, वो कैसे गलत हो सकती है? मैगी के लहजे में बेहद हैरत थी। जो रिपोर्ट तुम ले आई हो इसे माहिरिन के पास भिजवाया गया और माहिरिन ने जब इसे चेक किया तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो जौहर आबाद में जो जखीरा मौजूद है वो काटकस का नहीं बल्कि काटकस से ज्यादा नायाब धात काटकस नाटूला का है। काटकस नाटूला मिसाइल साजी में नहीं बल्कि कीमियाई हथियार बनाने के काम आती है और इस पर अक्वामे मुतहदा के तहत इंतहाई सख्त पाबंदियां हैं। लेकिन माहिरीन ने इस रिपोर्ट का जो तजजिया किया है इसके मुताबिक ये काटकस नाटूला भी नहीं हो सकती, क्योंकि काटकस नाटूला जमीन की जिन तबई साख्तों के अंदर पैदा होती है ऐसी कोई साख्त इस इलाके में मौजूद ही नहीं है, इसलिए ये काटकस नाटूला तो किसी सूरत हो ही नहीं सकती। जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है वो माहिर के बजाय अहमक आदमी है। ये धात सिर्फ काटकस है जो दरअसल हमें चाहिए, इस लिहाज से ये रिपोर्ट गलत होने के बावजूद हमारे लिए इंतहाई फायदेमंद है। अब हम खुद ही इसे हासिल करने के फॉल प्रूफ इंतजाम कर लेंगे, लेकिन मसला ये पैदा हो गया है कि तुम इनकी नजरों में आ गई हो, बॉस ने कहा तो मैगी बेख्तियार चौंक पड़ी। मैं? वो कैसे बॉस? मैंने इस कामरान को भी मालूम नहीं होने दिया कि मैंने इस रिपोर्ट की कॉपी कर ली है, मैगी ने कहा। मैंने भी हुकूमत को यही रिपोर्ट दी थी कि किसी को मालूम नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान के सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान, जो कि पाकिस्तान सेक्रेटरी सर्विस के इंतजामी इंचार्ज हैं, इस बारे में ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी से बात की और इन्हें कहा कि ग्रेटलैंड की एक एजेंट मैगी नामी लड़की इस रिपोर्ट की कॉपी ले गई है। चीफ सेक्रेटरी साहब को चूंकि इसका इल्म ही नहीं था, इसलिए उन्होंने इसकी यहाँ मौजूदगी से इनकार कर दिया। अलबत्ता उन्होंने दोनों ममालिक की दोस्ती के पेश नजर इंक्वायरी करने का वादा कर लिया। इसके बाद उन्होंने इस बारे में जब सेक्रेटरी दफा से बात की, क्योंकि ग्रेटलैंड में तमाम सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां वजारत दफा के तहत है, तो इन्हें तफसीली रिपोर्ट दी गई, लेकिन सेक्रेटरी दफा ने इस सिलसिले में मुझे भी आगाह कर दिया। मैंने फौरन पाकिस्तान के एक ग्रुप के जरिए मालूमात हासिल की तो पता चला कि रिपोर्ट पर ऐसे वाज़ह निशानात मौजूद थे जिससे जाहिर होता है कि इस रिपोर्ट की कॉपी की गई है, और इस सिलसिले में जो इंक्वायरी हुई है इसमें तुम मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई हो, और फिर ये केस सर सुल्तान के जरिए इमरान तक पहुंचा दिया गया है, और अब ला महाला इमरान खुद या पाकिस्तान सेक्रेट सर्विस इस सिलसिले में तुम्हें टारगेट बनाएगी, बॉस ने कहा। लेकिन इनके पास क्या सबूत है कि मैंने ये काम किया है, मैगी ने कहा। ये लोग सबूतों के पीछे नहीं दौड़ते, तुमसे खुद ही उगलवा लेंगे, और इसके बाद ये रिपोर्ट हासिल करने के लिए आखिरी हद तक चले जाएंगे, बॉस ने कहा। तो फिर आप क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैगी ने कहा। एक पॉइंट हमारे हक में जाता है कि हमारी एजेंसी बाज़ाहिर सरकारी एजेंसी नहीं है, बल्कि इसे भी प्राइवेट जाहिर किया गया है। वैसे मैंने इस बारे में सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब इन्हें बताएंगे कि ये रिपोर्ट एक प्राइवेट तंजीम जिसका कोई भी नाम लिया जा सकता है से हासिल की गई है। अलबत्ता तुम्हें अब कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, इस वक्त तक जब तक जखीरा वहां से हासिल नहीं कर लिया जाता, बॉस ने कहा। जैसे आप कहें, ये मुल्की मामला थे इसलिए आप बेहतर तौर पर इसे समझ सकते हैं और डील भी कर सकते हैं, लेकिन जब जखीरा अचानक गायब हो गया तो फिर वो लोग समझ ना जाएंगे कि ये काम ग्रेटलैंड ने किया है, मैगी ने कहा। जखीरा वापस नहीं ले जाया जा सकता, रिपोर्ट ले जाई जा सकती है, जखीरा हमारे हाथ लग जाए फिर जो होगा देखा जाएगा। तुम ऐसा करो कि तवील रुख्सत पर एकेडमिया चली जाओ, तुम्हारा रास्ता सिर्फ मुझसे होगा और किसी से नहीं, और तुम वहाँ मुस्तकिल मेकअप और नए नाम से रहोगी, बॉस ने कहा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर इस तरह मसला हल होता है तो ठीक है, मैगी ने फौरन रजामंद होते हुए कहा। ओके, नए कागजात तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे और तुमने एकेडमिया रवाना हो जाना है, अब तुम जा सकती हो, बॉस ने कहा। तो मैगी उठी, इसने सलाम किया और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा सामने मौजूद एक फाइल पढ़ने में मसरूफ था, जबकि ब्लैक जीरो किचन में था। ये फाइल एकेडमिया से भिजवाई गई थी और सर सुल्तान ने इसे इमरान को भिजवा दिया था, लेकिन इमरान की अदम मौजूदगी की वजह से उन्होंने ये फाइल इमरान के फ्लैट पर सुलेमान को भिजवा दी, और सुलेमान ने ये फाइल सर सुल्तान के पैगाम के मुताबिक दानिश मंजिल भिजवा दी थी। अब इमरान इस फाइल के लिए दानिश मंजिल आया था और ब्लैक जीरो ने फाइल इमरान के सामने रखी और खुद चाय लाने के लिए उठकर किचन में चला गया था। थोड़ी देर बाद ब्लैक जीरो चाय की दो प्यालियां ट्रे में रख के वापस आया। इसने एक प्याली इमरान के सामने रखी और दूसरी उठाई, वो अपने कुर्सी पर बैठ गया। इमरान ने फाइल बंद कर दी और चाय की प्याली उठा ली। इसके चेहरे पर बोरियत के तासरात उभर आए थे। क्या हुआ इमरान साहब, लगता है कि फाइल ने आपको बोर कर दिया है, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें सिवाय बोरियत के और क्या है, सिर्फ ये इतला है कि खतरनाक एजेंटों का कोई ग्रुप पाकिस्तान का रुख करने वाला है। सर सुल्तान अब वाकई बूढ़े हो गए हैं, मामूली मामूली बातों से परेशान हो जाते हैं। ऐसी फाइलें तो रूटीन में मुल्कों के दरमियान आती जाती रहती हैं। मैंने समझा था ना जाने क्या तूफान बरपा हो गया है, जब ये ग्रुप आएगा तो फिर देख लेंगे। मरने से पहले वावीले का क्या जवाब है, इमरान ने कहा और साथ ही वो चाय भी सिप करता रहा। इमरान साहब, वो मैगी वाले मसले का क्या हुआ, पहले तो आपने इसमें काफी दिलचस्पी ली थी, फिर आपने यकलख्त इसमें दिलचस्पी लेनी खत्म कर दी, ब्लैक जीरो ने कहा। वो सिलसिला खत्म हो गया था, मैगी किसी प्राइवेट तंजीम की एजेंट थी और ऐसी तंजीमें दौलत कमाने के लिए ऐसी रिपोर्टें उड़ाती रहती हैं। लेकिन ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी एजेंसी को इस रिपोर्ट की वापसी का हुक्म दिया तो सरकारी एजेंसी ने दबाव डालकर इस प्राइवेट तंजीम से वो रिपोर्ट हासिल करके चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचा दी और उन्होंने ये रिपोर्ट सर सुल्तान को भिजवा दी। ये रिपोर्ट असल रिपोर्ट की कैमरा कॉपी थी, लेकिन ये कॉपी ऐसे कागज पर की गई थी कि जिसकी मजीद कॉपी किसी तरह भी ना हो सकती थी, इसलिए मामला खत्म कर दिया गया, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। फिर से पहले कि मजीद कोई बात होती फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्सो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान यहाँ मौजूद है, दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। ना भी हो तब भी कान से पकड़कर दरबारी सुल्तान में हाजिर किया जा सकता है, इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। तुमने वो फाइल देखी है, सर सुल्तान ने कहा। हाँ, रूटीन की फाइल है, आप ख्वा मख्वा परेशान हो जाते हैं, जब ये ग्रुप आएगा तो फिर देख लेंगे, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं इसे सिर्फ तुम्हारे नोटिस में लाना चाहता था, क्योंकि जब तक मामला तुम्हारे नोटिस में ना आए वो मुझे पहाड़ जितना नजर आता है, लेकिन जब वो तुम्हारे नोटिस में आ जाए तो फिर मेरे नजदीक वो चींटी से भी छोटा हो जाता है, सर सुल्तान ने कहा। ये तो आपकी मोहब्बत है सर सुल्तान, बहरहाल मैंने इसे देख लिया है और मैं इस सिलसिले में अलर्ट रहूंगा, आप बेफिक्र रहें, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो सर सुल्तान के इस खुलूस से वाकई बेहद मुतासिर हुआ था। ठीक है, मैं वाकई बेफिक्र हो गया हूँ, अल्लाह हाफिज, सर सुल्तान ने कहा और इसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। सर सुल्तान, जितना आप पर एतमाद करते हैं इतना शायद कोई और चाहे भी तो नहीं कर सकता, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। ये इनकी मोहब्बत और खुलूस है, वरना असल काम तो पाकिस्तान की सेक्रेट सर्विस करती है या इसका चीफ करता है, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक जीरो इसकी बात सुनकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान साहब, जूलिया का फोन आया था कि चूंकि तवील अरसे से सेक्रेट सर्विस के पास कोई काम नहीं है, इसलिए पूरी टीम एक हफ्ते के लिए किसी पहाड़ी मकाम पर जाना चाहती है, लेकिन मेरे जहन में मैगी वाली बात मौजूद थी, इसलिए मैंने इसे कह दिया कि चंद इतलात ऐसी मिल रही हैं, जिसके बाद शायद कोई मिशन सामने आ जाए, इसलिए अभी वो यहीं रहें। अब आपने कह दिया है कि वो मामला खत्म हो गया है, तो फिर क्या ख्याल है, इन्हें इजाजत दे दी जाए? ब्लैक जीरो ने कहा, अगर मेरा खर्चा भी सरकारी तौर पर अदा किया जाए तो फिर बेशक इजाजत दे दो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका खर्चा क्या मतलब? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, जाहिर है वो मुझे भी साथ ले जाएंगे और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपना खर्चा खुद उठा सकूं, और दूसरों पर मैं बोझ बनना नहीं चाहता। हाँ, अगर चीफ मेरा खर्चा भी सरकारी कर दे तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है? इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, इनमें से किसी का खर्चा भी सरकारी नहीं है, वो सब अपने तौर पर जाएंगे, हकूमत की तरफ से नहीं। ब्लैक जीरो ने भी वजाहत करते हुए कहा, वो तनख्वाहें और अलाउंसेस तो लेते हैं और इस पीरियड की तनख्वाहें और अलाउंसेस भी लेंगे, जब वो तफरी करेंगे तो ये सरकारी खर्चा ना हुआ? इमरान ने बाकायदा दलील देते हुए कहा, और फिर इससे पहले के ब्लैक जीरो कोई जवाब देता, फोन की घंटी बज उठी, तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्सटो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान अभी यहाँ है कि नहीं? सर, सुल्तान ने कहा, ये ब्लैक जीरो चाय देगा तो जाऊंगा, चाय पिलाने का वादा करके भूल जाता है और मैं यहाँ बैठा चाय का इंतजार करता रहता हूँ। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। इमरान बैठे, एक खौफनाक वारदात हो गई है, वो धात जो जोहराबाद के जंगल से दस्तियाब हुई थी और जिसके सर्वे रिपोर्ट की कॉपी उड़ा ली गई थी, वो धात चोरी हो गई है, अब वहाँ कोई धात नहीं है, सर, सुल्तान ने कहा। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा, क्या मतलब, कैसे, क्या वहाँ बाकायदा खुदाई की गई है? इसके लिए तो खासी हैवी मशीनरी की जरूरत थी, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस धात के सिलसिले में अजीब गेम खेली गई है, असल में ये धात काट कर ही थी, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने वाले माहिर कामरान ने इसे दानस्ता गलत तौर पर काट कर नाटूला का रूप दे दिया। अब मालूम हुआ है कि इसने काफ्रिस्तान से भारी मुआवजा इस सिलसिले में हासिल किया था, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ बैन अल-अक़वामी पाबंदियां लगवाई जा सके। काटकस नाटूला के लिए हैवी और कीमती मशीनरी की जरूरत होती है, सिर्फ काटकस धात के लिए नहीं, इसे आम मशीनरी से भी आसानी से निकाला जा सकता है। एक और माहिर की रिपोर्ट आई तो मामला मशकूक हो गया, और जब कामरान पर दबाव डाला गया तो इसने असल बात बता दी, तो वजारत मदनियात ने इस धात को फौरी निकालने के लिए टीम वहां भेजी, तो पता चला कि वहां पहले ही खुदाई करके धात निकाली जा चुकी है, अब वहां इस धात का एक जर्रा तक मौजूद नहीं है और किसी को भी नहीं मालूम कि ये किसकी हरकत है। ताकि शिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, इतना बड़ा कि शायद इसका अंदाजा भी ना किया जा सके, सर, सुल्तान ने कहा। कितनी धात थी, मेरा मतलब है कि इसकी मिकदार कितनी थी, इमरान ने पूछा। माहिरीन के मुताबिक इसका वजन 10 पाउंड है और इस धात का 1 ग्राम भी अरबों डॉलर मालियत का है, ये इंतहाई नायाब धात है और इस धात की वजह से पाकिस्तान के माहिरीन पाकिस्तानी मिसाइल साजी को आगे ले जाने का सोच रहे थे, लेकिन पूरी धात ही चोरी कर ली गई है, सर, सुल्तान ने जवाब दिया। इस धात को यकीनन किसी खास कैप्सूल में ही ले जाया जा सकता है, इमरान ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मुझे तफसील का तो इल्म नहीं है, अलबत्ता होगा ऐसे ही, सर, सुल्तान ने जवाब दिया। अब तक तो ये धात मंजिले मकसूद तक पहुँच चुकी होगी, फिर अब क्या किया जाए, इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। नहीं, ये धात हमारी है और हमने इसे हर सूरत में वापस लेना है, اس سے ہمارے ملک کا دفاع بے حد مضبوط ہو سکتا ہے. سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کامران کا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا، اسی گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے خلاف مقدمہ چلے گا. سر سلطان نے جواب دیا، اوکے ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکشیا کے اس خزانے کو واپس لایا جا سکے. عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، عمران بیٹے یہ جذباتی مسئلہ نہیں ہے، ملک کو واقعی اس کی ضرورت ہے. سر سلطان نے کہا، ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، اب یہ میری ذمہ داری رہی. عمران نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، اللہ حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. تو عمران نے ریسیور رکھ دیا. یہ ناول ڈارک فیس کا بقیہ حصہ پارٹ 4 میں سماعت فرمائیں.